عیدِ قربان آئی ہے، مبارک عید مبارک،
مبارک
سبھی کو عید مبارک۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ہمارے پیارے نبی، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر پروگرام لے کر آ گئے ہیں جس پروگرام کا نام ہے مویشی منڈی، اور اس میں ہمارے ساتھ جو ہے دو مفتیان اکرام بھی ساتھ ہوتے ہیں جن سے ہم شرعی مسائل وغیرہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، دیگر باتیں بھی ہو جاتی ہیں، اور قربانی کے احکامات، قربانی کے جانور کی پہچان کیا ہے، کچھ خوبصورت جانور بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں، نارمل جانور بھی آپ کو دکھاتے ہیں، کچھ جہاں کے جو بیپاری ہیں ان سے بھی کچھ سوالات کا سلسلہ رہتا ہے اور مفتیان اکرام ان کے جوابات عنایت فرماتے ہیں۔ قربانی ایک ایسا کام ہے کہ مسئلے مسائل کچھ نہ کچھ درپیش ہو جاتے ہیں۔ اب بعض دفعہ ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ بھائی کیا کریں، کس سے معلوم کریں؟ اب اگر اپنے ذہن سے اس مسئلے کو حل کریں گے تو یہ بھی غلط ہو جائے گا، تو رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے۔ بھائی کسی مفتی صاحب کو بلائیے یا کسی مفتی صاحب سے رابطہ کیجیے۔ تو یہ کہ مفتیان اکرام سے جڑے رہنا بہت ضروری ہے، یہاں تک کہ جب آپ خریداری کے لیے جا رہے ہیں تو کسی نہ کسی مفتی صاحب سے رابطے میں رہیں، ہو سکتا ہے جانور کچھ پسند آ جائے۔ اب ویپاری بول رہا ہو کہ بھائی یہ نقص ہے، یہ ہو جائے گی قربانی، لیکن آپ اپنے مفتی صاحب کا دامن تھام کے رکھیں کہ مفتی صاحب آپ ارشاد فرمائیں کہ کیا کرنا ہے۔ اگر آپ یہ پروگرام جو مویشی منڈی جو کہ قربانی کے احکامات سے متعلق ہے اور مدنی چینل کے ساتھ جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت ساری معلومات حاصل ہو جائے گی۔ اچھا جی، ہم آپ کی طرف آئیں گے، مفتی جمیل صاحب اور مفتی سعید صاحب، ایک مرتبہ پھر آپ کے ہی پروگرام میں خوش آمدید، ویلکم۔ اچھا یوں ہیں کہ کچھ سوالات ہمارے ذہن میں آ رہے تھے، قربانی کا وقت کب سے کب تک ہے؟ عید کے پہلے دن، دوسرے دن اور تیسرے دن، تین دن تک قربانی ہے۔ جی ایک وقت آپ بتائیں، کچھ آپ بتائیں، مل جل کر حضرت ہو جائے۔
قربانی کا جو وقت ہے وہ 10 ذوالحجہ کی صبح صادق سے لے کر، یعنی فجر کا وقت شروع ہونے سے لے کر 12 ذوالحجہ کی مغرب تک ہے، مغرب سے پہلے تک۔
مغرب سے صحیح۔
اب اس میں یہ ہے کہ جو شہر میں رہتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ عید کی نماز کے بعد قربانی کریں، عید کی نماز سے پہلے ان کی قربانی نہیں ہو سکتا۔
اچھا، اب دوسرا ہے کہ جو گاؤں میں رہتے ہیں،
جو گاؤں دیہات میں رہتے ہیں جہاں عید کی نماز نہیں ہوتی، گاؤں دیہات میں رہتے ہیں تو وہ فجر کے وقت، فجر کی نماز کے بعد بھی قربانی کر سکتے ہیں۔
ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ماشاء اللہ۔
یعنی یہ تین دن قربانی کا یہ وقت ہے، صبح میں بھی قربانی کر سکتے ہیں، رات میں کرنا چاہیں تو یہ کر سکتے ہیں، لیکن البتہ رات میں کرنے کو فقہ کرام نے مکروہ قرار دیا ہے، تو لہذا رات میں نہ کی جائے،
رات میں نہ کی جائے۔ اچھا یہی ہے کہ جو اگر صبح سے اسٹارٹ کر رہے ہیں جو قصاب حضرات ہیں، وہ صبح سے اسٹارٹ کر رہے ہیں تو مغرب تک وہ بھی تھک جاتے ہیں۔
جی
کچھ آپ ارشاد فرمائیں کہ رات میں جیسے قربانی ہے لیکن بیچاروں کو ملی نہیں رہا کاٹنے والا، اب وہ کہ بولے میں بھائی رات میں فارغ ہوں یا مغرب کے بعد مجھ سے کٹوا لیں، تو پھر کیا کہیں گے؟ جیسے مجھے بولیں گے مکرو ہے لیکن مل ہی نہیں رہا، بیچارہ مجبور ہے، کیا کریں گے؟
اب اس میں علماء کرام جو فقہاء کرام ہیں انہوں نے رات میں قربانی کرنے کو جو مکرو بتایا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ اندھیرا ہوتا ہے،
صحیح ہے،
تو پراپر لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے اب جانور کے ذبح ہونے کے لیے چار رگے کٹنا ضروری ہیں۔ ایک سانس کی نالی ہے، دوسری اسی کے ساتھ کھانے کی پینے کی ایک نالی الگ سے ہے، دو نالیاں یہ ہو گئیں، اور دو نالیاں ہیں خون کی جنہیں شہرک کہا جاتا ہے، یعنی وہ بڑی نسیں ہوتی، تو ان چار رگوں کا کٹنا یہ ذبح کرنا کہلاتا ہے، یا تین بھی کٹ گئیں تو بھی ذبح ہو جائے گا، یا ہر ایک جو رگ ہے تو ان نالیوں میں سے ہر ایک اکثر کٹ جائے تو ذبح کا عمل پایا جائے گا۔ تو اب چونکہ رات کا وقت ہوگا، اندھیرا ہے، پراپر لائٹ نہیں ہے، تو اس صورت میں وہ چار رگیں کٹ پائیں نہ کٹ پائیں، اچھا چار رگیں کٹ گئیں لیکن یہ سمجھ رہا ہے کہ چار رگیں ابھی نہیں کٹی اور یہ ذبح کرتے 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 گردن کی ہڈی ہے وہاں تک چھری چلا رہے ہیں، تو اب یہ کیا ہوا، حد سے تجاوز کرنا پایا گیا۔
جب بعض تو اپنی جان کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں، دیکھو میں کتنا اندر ہوں، وہ غصہ پتہ نہیں کیا ये जलाल में आए हुए हैं।
तो ये फिर जानवर के साथ ज्यादती और जुल्म है। रात में अगर कुर्बानी करने की सूरत बन रही है तो फिर लाइट का प्रॉपर एहतमाम इंतज़ाम हो।
जबरदस्त
जैसे हम यहाँ पे बैठे हैं तो तकरीबन इस वक्त हम चारों तरफ देख रहे हैं तो रोशनी का एहतमाम है। तो अगर किसी जगह पे रात के वक्त में कुर्बानी की जा रही है और दिन में कुर्बानी करने के लिए यानी जो कसाब हैं जो माहिर हैं उनके पास टाइम नहीं है और आपका जो टाइम उनकी तरफ से मिला है वो रात का टाइम है, तो अब ऐसे मौके पर रात में जब कुर्बानी की जा रही है तो लाइट का बाकायदा प्रॉपर एहतमाम किया जाए।
जबरदस्त
जिस जगह पे जानवर ज़बह किया जा रहा होगा वहाँ पे अच्छी अंदाज से लाइट हो ताकि जानवर की रगें कितनी कटनी हैं कितनी कट चुकी हैं और चार रगें कटने के बाद अब मज़ीद छुरी जानवर पर ना चलाई जाए। तो इस वजह से उलमा ने मना फरमाया, इसको मकरूह बताया, लेकिन अगर ये लाइट का अच्छा एहतमाम हो जाता है तो फिर वो कराहत का जो हुक्म था वो फिर ख़त्म हो जाएगा।
मकरूह से मुराद यहाँ पर मकरूह तंजीह, मतलब
ये भी
ना ना
मुश्किल है,
हाँ
मकरूह तंजीह
यानी
क्या होता है,
नापसंदीदा,
नापसंदीदा।
यानी अगर कर ली तो कुर्बानी हो जाएगी। तो अगर कोई ऐसी हाजत नहीं है दिन में, देखें कुर्बानी के वक्त तो दूसरे दिन भी है ना, तीसरे दिन भी है,
सही सही
तो लिहाजा अगले दिन सुबह कर ली जाए,
सही है,
लेकिन रात में भी अगर कर लेते हैं तो शरी तौर पे गुनाहगार नहीं है, कुर्बानी हो जाएगी।
ठीक है। अच्छा जी, जितना हो सके ख्याल कीजिए, जितना हो सके जानवर को ख्याल कीजिए, कुर्बानी वो है जो अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल हो जाए, तो इन चीज़ों को भी आपने अपने जहन में रखना है। अच्छा मुझे, अब जैसे कि जानवर लेकर आ गए, अब बाज़ दफ़ा बच्चे भी घुमा रहे हैं फिरा रहे हैं, और बाज़ दफ़ा बहुत हैवी जानवर होता है, अब निकले थे दो भाई, जानवर निकल गया उनके हाथ से, अब वो इतना कहाँ गया, ये बेचारे छोटे थे, अब वो पकड़ ही नहीं सके, वो जानवर बहरहाल इधर उधर हो गया, अब जानवर का पता नहीं चला, या जानवर लाए थे और उसको कुछ ऐसी चीज़ें खिला दी या फिर उसकी देखभाल नहीं कर सके, अब मर गया। एक तो जानवर भाग गया, पता नहीं चला कि भाई कहाँ गया, और दूसरा है कि जानवर मर गया, तो इसमें क्या होगा कि भाई जानवर गुम हो गया है।
जी इसमें ये देखें, जानवर जो ख़रीदते हैं दो किस्म के अफराद होते हैं, एक तो जिन पर कुर्बानी वाजिब है और एक जिन पर वाजिब नहीं होती लेकिन शौक़ होता है जैसे तैसे करके कुर्बानी करनी होती है। तो जिस पर कुर्बानी वाजिब ना हो उसको शरी फ़कीर कहा जाता है
सही
इन इस्तलाह में। उस पर अगर शरी फ़कीर ने कुर्बानी की नीयत से जानवर ख़रीदा है तो अब इस पर वही जानवर ज़बह करना लाजिम हो जाता है,
वही से मुराद
यानी जो जानवर उसने ख़रीदा है उसी जानवर को ज़बह करना लाजिम है, अब तब इसको छोड़ के किसी और को ज़बह नहीं कर सकता। ठीक है, अब आपने सवाल ये पूछा कि वो गुम हो गया, तो अगर शरी फ़कीर जो जानवर लाया था अब वो गुम हो गया तो वैसी शरीफ फकीर है, अब उस पर वाजिब नहीं है दूसरा जानवर लेकर,
अच्छा ठीक
लेकिन जिस पर कुर्बानी वैसी वाजिब है, वो जानवर लाया था जानवर गुम हो गया उसके बावजूद उस पर वाजिब है, इसके पास इस्तेआत है, तो अब भी उस पर वाजिब यही रहेगा कि वो दूसरा जानवर जो है वो ज़बह
जी।
करे।
कोई किसी का जानवर खो गया मर गया, बोला इतनी मुश्किल से लेकर आया था, पैसे जोड़ जोड़ के लाया था, अब क्या करें। इससे मुझे एक बात याद आ गई, तो किसी ने कहा हज इतना महंगा हो गया है तो गरीब कैसे जाएगा, तो कोई थे वो कहने लगे भाई रखा भी अमीरों के लिए है, गरीबों पे तो हज भी नहीं है, तो आप मदीना देखें मक्का देखें उमरा कर लें, तो ये है कि हज है ही मालदारों पे, लेकिन अल्लाह ताला के बारगाह में दुआ तो होती है, आरजू तो हर मुसलमान की। इससे मुझे एक ये बात याद आ गई थी। अच्छा वो अगर मर जाता है जानवर, ये तो गुम हो गया तो वो दोबारा लाइन लाए, मर गया,
मरने की सूरत में भी यही दो तकसीम होंगी
अच्छा
कि जो जानवर ज़बह करने के लिए कुर्बानी के लिए लेकर आया था अगर वो शरई फ़कीर है यानी वो मालदार नहीं है, उस पर शरीयत ने लाजिम ही नहीं किया था और वो अल्लाह ताला की राह में कि सब जानवर कुर्बान कर रहे हैं तो मैं भी कुछ पैसे जोड़ चुका हूँ 25-30 हज़ार रुपये का, वो भी कोई बकरा लेकर आ गया था, अब वो बकरा मर गया तो अब इसके ऊपर कुर्बानी पहले भी वाजिब नहीं थी, इसने ख़रीद कर अपने ऊपर एक वाजिब की थी कि अब मैं कुर्बानी करूँगा। अब ये जानवर कुर्बानी के वक्त से पहले ही दुनिया से चला गया मर गया तो अब इसके ऊपर नए जानवर की कुर्बानी लाजिम नहीं। जो मालदार होगा उसके लिए यही हुक्म है कि जब उसने वो अब भी साहिब निसाब है, जानवर ख़रीदने के अंदर पैसे खर्च हुए थे, मिसाल के तौर पर 1.5-2 लाख रुपए का वो जानवर लेकर आया था, इस रकम का जानवर लाने के बाद जानवर के मरने के बाद भी अभी भी वो साहिब निसाब है, साहिब हैसियत है, वो उस पर कुर्बानी के शरायत अब भी पाए जा रहे हैं, तो फिर वो उसको दोबारा
लाना
उसी
होगा।
जानवर का अहतमाम करना पड़ेगा। अब ज़रूरी नहीं है कि वो बड़ा ही जानवर लाए,
ठीक है,
मिसाल के तौर पर
पूछता भी
पहले
मिला सकते हैं किसी ने,
पहले वो मिसाल के तौर पर अकेला ही एक बड़ा जानवर यानी गाय की सूरत में लेकर आ गया था, तो अब इस पर लाजिम तो बड़े जानवर में से एक हिस्सा, 7 हिस्सों में से एक हिस्सा, या एक बकरा या बकरी कुर्बानी की शरायत वाली, ये इसके ऊपर वाजिब था इनमें से किसी भी तरीके से कुर्बानी कर ले, लेकिन वो अपने तौर पे 1-2 लाख का जानवर लेकर आया था, गाय लेकर आया था, बछिया लाया था, वो मर गई। तो अब इस पर ये लाजिम नहीं है कि अब दोबारा ही 2 लाख वाला ही लाना है, ये लाजिम नहीं है।
हिस्सा भी
ये
मिला ले
हिस्सा
उसका।
भी डाल सकता है किसी बड़े जानवर में, ये एक मुनासिब 1 साल की बकरा बकरी उसको भी कुर्बानी के लिए खरीद
सही
सकता है। तो इस पे वो लाजिम नहीं है कि जितना पहली मालियत का जानवर था उतनी ही मालियत होनी चाहिए। इसी जानवर गुम होने में भी ये ज़रूरी नहीं है
सही सही
कि पहली जितनी मालियत ही का लाना है। हाँ, अगर बड़ा जानवर लाए गए थे 7 अफराद की तरफ से, अब उनमें से हर एक का वाजिब तो अदा हुआ नहीं क्योंकि वो जानवर पहले ही मर चुका है या गुम हो गया, गुम भी ऐसा हुआ पता नहीं है।
पता नहीं है।
अब इनके ऊपर साहिब निसाब होने की सूरत में कुर्बानी वाजिब है। अब ये सातों चाहें तो फिर दोबारा मुश्तरका एक बड़ा जानवर कुर्बानी के शराइत वाला लेकर आ जाएं, या चाहें तो फर्दन फर्दन अलग अलग कहीं पे भी हिस्सा डाल लें या बकरा बकरी कर लें।
अच्छा ये है कि जैसे कि कुर्बानी वाजिब थी, पता है कि कुर्बानी मुझ पर वाजिब है, लेकिन इस साल नहीं की, वक्त भी गुजर गया जो 3 दिन आपने बताया। अब आइंदा साल जब आया तो अब ऐसे हालत नहीं है, अब क्या इसकी कज़ा करनी होगी या नहीं करनी होगी?
जिस पर कुर्बानी वाजिब हो और वो कुर्बानी ना करे, उसने कोई जानवर भी नहीं ख़रीदा था, तो अब तो उसकी कज़ा नहीं हो सकती। इस माना में कि अब वो कुर्बानी नहीं कर सकता। अब उसके लिए हुक्म ये है कि एक बकरी की कीमत वो सदका करे।
अच्छा, इन अय्याम के बाद।
जी, अब ये नहीं हो सकता जैसे इस दफ़ा कुर्बानी आ रही है, उसने सोचा मैंने पिछले 2 सालों की भी कुर्बानी नहीं की थी, उसको भी इसमें शामिल कर लेता हूँ,
ऐसा
ऐसा
नहीं
नहीं
हो
हो
सकता।
सकता। बल्कि बकरी की कीमत सदका करना ये उस पर लाजिम होगा।
जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा मुफ्ती साहब, जैसे कि कुर्बानी का जानवर गुम हो गया था, पहली जिलिजा को लेकर आए जानवर, 4 को गायब हो गया, गुम हो गया, मिल नहीं रहा। अब ये है कि क्या करें, बच्चों ने कहा लेकर आए, या फिर जहन बना चलो भाई दोबारा लेकर आना, कुर्बानी का जानवर दूसरा खरीद के लेकर आ गए, पता चला 8 को किसी ने खबर दी वो आ गया, जो घुमा था जानवर वो इत्तला मिली है। भाई शोरा तो होता है ना भाई, जानवर इनका खो गया है, ये तो इधर बांध दिया था किसी ने, फिर ये अब उसके बाद 2 आ गए, अब क्या करे, ये इसको बेच सकता है या क्या अहकाम होंगे कि दोनों को कुर्बान करेगा, जरा इस बारे में शाह फरमा।
इस सूरत में भी वही तफसील होगी कि जिस पर कुर्बानी वाजिब नहीं थी वो कुर्बानी का जानवर ले आया, वो गुम हो गया, फिर भी वाजिब नहीं थी, फिर भी जैसे तैसे करके दोबारा जानवर उसने ले लिया, पहला वाला भी जानवर मिल गया। अब ऐसे शख्स पर लाजिम है कि दोनों जानवर की कुर्बानी करें,
अच्छा वाह,
ऐसा नहीं हो सकता एक को छोड़ दे, नहीं है, क्योंकि उस पर वाजिब नहीं था ना, तो उसने अपने ऊपर खुद वाजिब किया है जानवर खरीद के। अब दूसरा शख्स जिस पर कुर्बानी वैसे वाजिब है, उसने अगर दूसरा जानवर ले आया और पहला भी मिल गया, अब उसे इख्तियार है दोनों में से जिससे चाहे कर ले,
ठीक है
ठीक है। पहले जानवर को करता है भी
तो
तो
भी ठीक
ठीक
है।
है, अगर दूसरे जानवर को करता है तो वो दूसरा जानवर अगर पहले जानवर से कीमत के अतबार से आला है,
सही
ठीक
है
है, फिर तो कोई मसला नहीं है।
सही है।
लेकिन दूसरा जानवर जो लिया था उसने कम कीमत का लिया था और उसने जो है दूसरा वाला किया है, पहला वाला नहीं किया, तो ये जो डिफरेंस आया कीमत का, वो कीमत सदका करना उस पर लाजिम होगा। हाँ, अगर पहले को भी ज़बह करता है तो फिर सदका करना लाजिम नहीं होता, लेकिन
माशाल्लाह
अगर दूसरे को करता है वो कम कीमत का है, तो जितनी कमी कीमत में वाकई हुई है उस कमी को सदका करना उस पर लाजिम
वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। देखें मसले मसाइल, बाज़ दफ़ा तो यूँ होता है कि आप लोगों के साथ बैठे हैं, बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही है, लोग आते हैं इतने परेशान होते हैं, आपका तो वास्ता पड़ता है, इतने परेशान होते हैं, इतने परेशान होते हैं, और किसी अहले इल्म के पास, किसी मुफ्ती साहब वगैरह, मिनटों सेकंडों में मसला हल हो जाता है, वो कितना खुश होता है। तो अल्लाह ताला आपको सलामती अता फरमाए, बरकत अता फरमाए। अच्छा जानवर तो ख़रीद के लेकर आ गए, जैसे कि मिसाल के तौर पर 3 लाख का जानवर ख़रीदा, अब ये कि मवेशी मंडी की जो कीमत है वो बढ़ गई, ठीक है, जो 3 लाख वाला था वो 4 लाख का हो गया, अब या इसको किसी भी ज़रिए से जो है वो सस्ता जानवर मिल गया, अब ये इलाके में लेकर आया, लोग पूछ रहे हैं भाई हमारी ये तो सवाल है ना कि फ़र्ज़ है ये समझ लें, कितने का लाए, ये तो पूछा जाता है कितने का, अब उसने इतने का लाए, अब किसी ने आके डिस्कस करी भाई इतने का लेकर आओ, एक काम करो 50,000 या 25,000 रुपये ऊपर लेकर ये मुझे दे दो, अब इसके जहन में बैठा हुआ है मैं जाके दूसरा ले लूँगा, मेरी तो अच्छी डील बनी हुई है, अब इसको ज़्यादा प्रॉफिट में कोई खरीद लाया, ये कुर्बानी के लिए था आपने, लेकिन इसको अब ये कि प्रॉफिट होता हुआ नज़र आ रहा है, तो अब क्या करेंगे?
देखें, ये जब कोई जानवर अल्लाह तबारक व ताला के नाम पर ईद उल अज़हा के मौके पर कुर्बानी के लिए ख़रीदा जाता है, तो दरअसल उस जानवर के ज़रिए से, उसको ज़बह करने के ज़रिए से आदमी एक इबादत की नियत कर रहा होता है, कुर्बे इलाही हासिल करने की नियत कर रहा होता है। तो अब जहन में कोई ये वसवसा डालता है कि यार आप ऐसा करो, आप लाए थे 3 लाख का, 3.5 मुझसे ले लो,
जी
ठीक है। अब शैतान तो शैतान है, फिर वो लालच भी देगा कि देखो यार तुझे, तू 3 लाख का एक और जानवर लेकर आ जाएगा। बाज लोग होते ना कि वो बहुत ज्यादा
नहीं, इस
मंडी
तरह
में,
तो मुझे ज्यादा सवाब मिल जाएगा ना।
तो 50,000 का एक बैठे बिठाए प्रॉफिट हो जाएगा वो जेब में, और 3 लाख का एक और जानवर आ जाएगा, दोबारा से ले आऊंगा। तो इस तरह करना जायज नहीं है। अगर किसी ने ऐसा कर दिया कि जानवर बेच दिया और ये 50,000 का प्रॉफिट इसे महसूस हो रहा है, तो ये 50,000 का प्रॉफिट इसके लिए जायज नहीं है। अब इस पे लाजिम यही है कि 3.5 लाख रुपए का ही कोई जानवर लेकर आए। अगर ये
सही
3 लाख का लेकर आए और 50,000 इसने अपने पास रखे हैं कि मैं इस्तेमाल करूंगा, इस्तेमाल जायज नहीं है, ये 50,000 रुपये सदका करना होगा, ठीक
अच्छा
है। तो अब ये कि जानवर को जो आपने कुर्बानी की नीयत से जानवर खरीदा है, अब उसको रद्दो बदल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो शरीय एतबार से इससे मना किया गया है कि जो जानवर आपने कुर्बानी की शराइत के मुताबिक खरीद लिया एक दफ़ा, तो अब उसी को ज़बह करें जब तक कि उसमें कोई ऐसा ऐब पैदा ना हो जाए कि वो कुर्बानी में रुकावट डाल रहा हो और आपका वाजिब अदा नहीं हो रहा हो, तो फिर अब आप दूसरे जानवर की तरफ जाएंगे। तो अब एक सूरत यह है कि आपने जैसा जानवर लिया उससे कम रेट का, उससे कम क्वालिटी का, अब आप इसको बेच के उससे कम क्वालिटी का जानवर ले रहे हैं, तो ये नाजायज़ है। अच्छा, इसी तरह जिस लेवल का, जिस क्वालिटी का जानवर पहले ख़रीदा था, उसी क्वालिटी का जानवर आप दोबारा ख़रीदें, उसी जैसा ख़रीद रहे हैं, तब भी मना है, ये भी मकरूह तहरीमी और ये भी गुनाह। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि आपने 2 लाख रुपए वाला जानवर जो आप लेकर आए थे कुर्बानी की शराइत के मुताबिक था, आपने इसको फ़रोख किया, इसमें मज़ीद रकम मिला के और अच्छा जानवर लेकर आ गए, या 2 लाख रुपए में ही क्वालिटी वाइज इससे भी अच्छा और फरबा जानवर आपको कहीं से मिल रहा है, तो ये काम जायज़ है। किसके लिए? जो कुर्बानी करने वाला गनी शख्स है,
मालदार
मालदार,
हो।
जिस पे शरीयत में कुर्बानी वाजिब की है, वो ये काम कर सकता है, जबकि पिछले जानवर के मुकाबले में अच्छी क्वालिटी का जानवर अब लेकर आएगा, ठीक है। अलबत्ता जो शरीफ फकीर हैं जिन पे कुर्बानी वाजिब नहीं है, वो अगर मिसाल के तौर पे 5 लाख का जानवर भी जिस तरह से भी रकम
लेकर आ गए
लेकर आ गया, वाजिब नहीं थी फिर भी लेकर आ गया, तो अब वो जानवर को रद्दो बदल नहीं कर सकता, ना अच्छे से बदल सकता है, ना कम क्वालिटी से बदल सकता है, क्योंकि जब शरीयत ने किसी पर कुर्बानी वाजिब नहीं की और वो कुर्बानी अपने ऊपर वाजिब इस अंदाज से कर
कर
रहा है
ली
कि
उसने।
कुर्बानी की नियत से जानवर खरीद लिया, तो ये गोया एक अपने ऊपर वाजिब करने वाली बात हुई। अब जो जानवर इसने खरीदा है उसी की कुर्बानी इस पे वाजिब है, बदल नहीं सकता।
अच्छा, आपकी बात से मुझे एक बात जहन में आ रही थी। अब जैसे कि कोई जानवर लेकर आ गया, अब वो मालदार है या फिर नॉर्मल है, मालदार नहीं है। अब वो लेकर आया जानवर, मिसाल के तौर पे जो है वो 2 लाख का ले आया। अब जब वो रास्ते में ला रहा था ना, तो उसको ऐसा लग रहा है कि यार महंगा ले लिया। अच्छा, जब इलाके में पहुंचा तो लोग इस किस्म की बातें करें, यार महंगा लेकर आ गए। अच्छा, वो इस वसवसे में आ गया कि यार महंगा लेकर आ गया हूँ। अच्छा, वो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि बाद लोग ना रेट भी नहीं बता रहे होते हैं, या गलत बता रहे होते हैं यार कि लोग बातें बनाएंगे। अब इस किस्म की लोग बातें ना बनाएं कि मैंने लिया महंगा है और मैं बता सस्ता रहा हूँ, और ताकि लोग बातें ना बनाएं। अब इन सवाल से बचने के लिए, यानी कि जैसे ये तो मवेशी मंडी वगैरह, ये कि भाई एक लोग सवालत कर रहे होते हैं गाड़ी के मामले में, दीगर चीज़ों के मामले में कम रेट बता रहे होते हैं, या फिर ये अंदाज़ होता है कि बहुत ज़्यादा बता रहे होते हैं कि एक वाह हो। अब ये कि इन मसाइल से, इन सवाल से बचने के लिए अगर कोई बहुत कम रेट बता रहे है, तो इधर क्या फरमाएंगे आप?
लेकिन यहाँ झूठ बोलने की तो इजाज़त नहीं होगी
सही
कि यार वो, दूसरी बात यह कि अगर वो बता दे तो इसमें हर्ज क्या है, क्योंकि हुक्म तो यही है ना, मुस्तहब तो यही है कि महंगा जानवर यानी कीमत के अतबार से भी आला हो और गोश्त वगैरह के अतबार से भी आला हो, तो अगर महंगा भी ले लिया तो खसारे का सौदा
हाँ,
तो है ही
सुभान
नहीं,
अल्लाह सुभान अल्लाह।
सवाब ही सवाब है,
हाँ हाँ वाह
जो
सुभान
भी जा रहा है अल्लाह की राह में जा रहा है ना।
अल्लाह
तो अमीर
जबरदस्त।
अहले सुन्नत का वो अंदाज़ याद आ रहा था इस सूरत में, तो अमीर अहले सुन्नत ख़ास कर जब आप अली सलातो सलाम के लिए उनके नाम की जो कुर्बानी आप फरमाते हैं, तो उसमें भावताव नहीं करते, कमी नहीं करवाते, बल्कि उससे और कहते हैं कि आप मज़ीद लेंगे,
वाह
इस तरह का
मतलब
भी एक अंदाज़ है। तो लिहाजा ये जो पैसे अगर खर्च हो रहे हो भी रहे, अगर बिलफर्ज आपने महंगा ले लिया, कोई खसारे का
नहीं
सौदा
जाएगा।
नहीं, ये मेज़ान पर ये आपके लिए भारी होगा,
मुझे भी एक बात याद आ गई, मैंने भी सुना था अमीर फरमाते हैं मेरी एक कुर्बानी, तो कुछ कुर्बानी आपको यहाँ पे देखनी है, एक कुर्बानी जो है वो मक्के पाक में है कि वहाँ की एक नेकी एक लाख के बराबर है। अब ये है कि लोग वहाँ से तो शायद वकील कर देते होंगे ये वाली कुर्बानी की बकरा ईद की कि यहाँ पर जो है जानवर ज़बह करते हैं गोश्त वगैरह तो मिल जाएगा, लेकिन नेकियाँ वहाँ पर ज़्यादा, सवाब ज़्यादा। तो बस ये है कि घाटे का सौदा है ही नहीं, ठीक है, खुश दिली से यानी पैसे भी निकाले ना, और अगर बिलफर्ज जानवर आगे पीछे भी हो जाए मुझसे और मर गया या फिर वाजिब थी तो फिर दूसरी कुर्बानी में खुश दिली के साथ इसको ख़रीदें, ठीक, घाटे का सौदा तो है ही नहीं। लोग बातें बना रहे हैं, बनाते अगर सस्ता लेकर आ गए तो जब भी शायद बातें बनेंगी, महंगा लेकर आ गए तो जब भी बातें बनेंगी, बस नियत हो अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के लिए। तो माशाल्लाह यहाँ पर बैठ कर गुफ्तगू हो गई, मज़ीद अब हम आगे की जानी बढ़ेंगे। तो आइए कुछ आपको दीगर हम सेगमेंट वगैरह शामिल करते हैं। बड़ा अनोखा जानवर हमें नज़र आ रहा है और शायद मदनी चैनल के नाज़रीन के लिए एक बड़े दिलचस्प हो। अब जारी बातें यहाँ पर आया है तो कोई ख़रीदार हो जाएगा बनाओ का जानवर समझ के इसको खरीद भी है। अच्छा, इसकी खासियत क्या है? इसकी टांगे जो है वो बताई जा रही हैं 6 हैं। नादरीन आप तलाश करें, आपको नज़र आ रही हैं, मुझे आपको पता नहीं कहाँ है।
हाँ मुझे 6 तो नज़र आ रही हैं।
6 आ गई हैं नज़र,
6 टांगे हैं इसकी, ठीक है, 2 ही ऊपर आई हुई और बाकायदा इनके खुरों में भी जाने वो भी बढ़ते हैं इनके। चलने में थोड़ी इसको होती है दिक्कत, लेकिन माशाल्लाह खाने पीने में बेहतरीन है।
अब जैसे इसकी इजाफी टांगे हैं, ठीक है, अब ये चल भी रहा है लेकिन चलने का इसका अपना अंदाज है कि नॉर्मल नहीं चल रहा है। अब इस किस्म के जो जानवर हैं ये खूबी में आएंगे या ऐब आएगा, इसके बारे में क्या कहेंगे?
देखें, अब ये जैसे बहुत सारे जानवर इस टाइप के वीडियोस में नज़रों में आते रहते हैं कि जिनके अंदर ऐसी कोई यूनिक कोई बात होती है कि मतलब 4 टांगे तो एक कॉमन इस तरह के जानवरों की तो होती हैं, चौपाया जब भी कहते हैं, लेकिन चौपाए होने के साथ 4 टांगों के साथ साथ अलग से 5वीं टांग भी लटक रही होती है, इसकी तो माशाल्लाह 6 हैं। तो इस तरह बाज़ों की 5, बाज़ों की 6 भी हो सकती हैं। तो अगर ये जो 5वीं और 6ठी टांग या सिर्फ 5वीं टांग भी मौजूद है तो ये वैसे एक देखने के हिसाब से एक आम जानवर के मुकाबले में थोड़ा सा यूनिक लगता है। अब कभी इसको लोग जो है वो माजूर टाइप का भी समझ सकते हैं, लेकिन अगर 4 टांगे बिल्कुल सही सलामत हैं, चलता है, खाता है, पीता है, इजाफी टांग भी लटक रही है जिससे वो कोई काम नहीं करता,
सही है,
लेकिन उसमें जान है, सब कुछ है, तो ऐसे जानवर की भी कुर्बानी हो जाएगी। कुर्बानी के दीगर शरायत अगर उसमें पाए जा रहे हैं, उम्र उसकी, जैसे बड़ा जानवर है तो 2 साल इसकी उम्र हो, ठीक है, और कुर्बानी के बकिया सारे शरायत पाए जा रहे हैं तो इस इजाफी टांग के लटकने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि समझे कि एक रान आपको एक और मिल रही है।
छे पाए, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप कुछ कहना चाहेंगे?
ये बड़ी अच्छी इन्होंने गाइडलाइन दी, मेरे ध्यान में ये था कि इसकी वजह से शायद कुर्बानी ना हो पाए, लेकिन मुफ्ती साहब की वजह से थोड़ी रहनुमाई हो गई। बाकी इसमें कोई किसी किस्म का वो नहीं है, खाने पीने में चलने में सही है, खाली ये 2 टांगे इसकी
ये उस तरह के ऐब में नहीं आ रही हैं।
जी जी, ऐसा ऐब नहीं है कि जिसकी वजह से कुर्बानी ना हो, चलता फिरता सही है, बीमारी इसके अंदर कोई
बीमारी
नहीं, चारा सही खा रहा है,
चारा भी सही
तो
खा रहा है,
इस वजह से कुर्बानी हो जाएगी। और उम्र इसकी आप बताएं कितनी है?
अभी तो है तकरीबन 16-17 माह का ही है।
अच्छा, अभी पूरी नहीं,
नहीं अभी उम्र में,
हाँ उम्र जो कम है, हाँ 2 साल के जब हो जाएगा तो फिर ये कुर्बानी के लायक हो जाएगी।
गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, प्रोग्राम हमारा देख रहे हैं मवेशी मंडी। तो आज भी माशाल्लाह एक गुफ्तगू हुई और आपको यकीनन सीखने को मिल रहा होगा। तो अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे इस आज के प्रोग्राम को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
मुबारक ईद मुबारक, सभी को ईद मुबारक।